Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Sonu Sood.
धन्यवाद अनुभा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ SP शर्मा. मिस्टर शर्मा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी.
थैंक यू सोनू. Benchmark domestic indices end in positive territory despite mixed global cues. Sensex rises over 590 points. Nifty closes at 23,332. Asian indices end mixed. European indices trade in negative territory ahead of US President Donald Trump's tariff announcements. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $74.09 per barrel.
मिले जुले वैश्विक संकेतों के बावजूद प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक तेजी में. सेंसेक्स 590 से अधिक के उछाल में रहा. निफ्टी 23,332 पर हुआ बंद. एशियाई बाजारों में रुख मिला जुला था. अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्कों से जुड़ी घोषणा से पहले यूरोपीय बाजारों में गिरावट का रुख था. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में आई गिरावट. ब्रेंट क्रूड $74.09 प्रति बैरल पर था. शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से, जहां प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्रों की अगुवाई में 0.7% से अधिक की वृद्धि पर बंद हुए. बाजारों में ये बढ़त अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शुल्कों को लेकर घोषणा से पहले वैश्विक संकेत मिले जुले रहने के बीच आई. 30 शेयरों पर आधारित बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.78% के उछाल से 593 अंक बढ़कर 76,617 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.72% की बढ़त से 167 अंकों की वृद्धि दर्ज करता हुआ 23,332 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां भी तेजी का माहौल था. BSE मिडकैप सूचकांक 1.3% से अधिक के उछाल में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज हुई.
Benchmark domestic equity indices today ended with gains of over 0.7%, driven by realty and consumer durable sectors amid mixed global cues ahead of the US President Donald Trump's tariff announcements. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, rose 593 points or 0.78% to close at 76,617. The National Stock Exchange, Nifty 50, gained 167 points or 0.72% to settle at 23,332. The broader market indices at the BSE also witnessed an uptick. The mid-cap index climbed over 1.3% and the small-cap index advanced almost 1%. In the Sensex index, 19 out of 30 companies ended in positive territory. Among the top gainers, Zomato surged over 4.9%, Titan jumped over 3.7% and the IndusInd Bank gained over 2.8%. Conversely, among the top laggards, Nestle India declined over 1.3%, Power Grid as well as Ultratech Cement both slipped 0.88% each, and Bajaj Financial Services lost over 0.6%. In sectoral indices at the BSE, all 21 sectors logged gains. In the top gainers, realty rose over 3.6%, consumer durables added over 2.6%, and consumer discretionary advanced 1.7%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,863 companies advanced, shares of 1,091 companies declined, and shares of 131 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 39 companies hit their 52-week high, while 43 hit their 52-week low.
रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की मामूली गिरावट से ₹85.50 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 104.13 पर था। क्या कहेंगे आप मिस्टर शर्मा, आज जो हमने बाजार में तेजी देखी है, बावजूद इसके कि जो वैश्विक बाजार है यूरोपीय बाजारों में गिरावट है और बाकी एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख है, किस तरह से आप देखते हैं अभी बाजार की स्थिति को? क्या ये कल की भारी गिरावट जो आई ऑलरेडी वो जो नर्वसनेस थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, और क्या आप आज से आपको क्या आशाएं हैं जो टैरिफ से रिलेटेड अनाउंसमेंट होने वाली है?
देखिए सोनू जी, जो इंडिया का बाजार है वो काफी रेजिलियंस शो कर रहा है, और हमारी करेंसी भी रूपी भले ही पहले वीक रहा हो लेकिन अभी डॉलर के मुकाबले में जिस तरीके से डॉलर वीक हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, मैं कहूंगा कि रूपी उससे ज्यादा मजबूत हुआ है। तो बाजार में एक जो हमने रुख देखा, जो एक करेक्शन, पहले एक डीप करेक्शन देखी थी, उसके बाद हमने काफी रिकवरी देखी, बहुत ही स्ट्रांग रिबाउंड देखा। जब ये मार्केट्स ने ऑब्जर्व किया कि जो यूएस कर रहा है उसका सबसे ज्यादा नुकसान तो यूएस इकॉनमी को ही होना है, हमें उसका नुकसान कम है जबकि यूएस इकॉनमी को ज्यादा है। वो क्यों? क्योंकि वो उसको इन्फ्लेशन रिपरकशंस फेस करने होंगे, उसका जो बायलेटरल रिलेशंस है वो इम्पैक्ट होंगे। तीसरा, जो यूएस का लॉन्ग टर्म पॉलिसी प्रस्पेक्टिव है वो अनसर्टेन होता है। तो हमारी मार्केट्स ने बहुत अच्छे से रिबाउंड किया क्योंकि हमारे जो संसाधन है, हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही इंटैक्ट है। तो अभी का जो रुख, अभी हमने जो पिछले 2-3 दिन में देखा, जो वॉलेटिलिटी देखी, पहले मार्केट ने काफी गिरावट दिखाई कल और आज एक रिकवरी देखी गई, तो मार्केट थोड़ी कॉशियस तो है कि यूएस का जो भी अनाउंसमेंट होगी, भले वो सबको पता है कि यूएस क्या करने वाला है कि इसके ऊपर ऑटो के ऊपर टैरिफ लगाएगा, 25% टैरिफ रहेगा, और जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स रहेंगे जिनके साथ ट्रेड डेफिसिट है, तो ऐसी जो चीजें हैं कुछ अपेरेंट तो हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा वो अनसर्टेन है। उसमें ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता।
तो मार्केट स्पेसिफिक होगा,
कंट्री स्पेसिफिक होगा, उसके ऊपर अनसर्टेनिटी अभी भी है जिसकी वजह से मार्केट्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी और कल भी रहेगी। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मार्केट्स ने काफी करेक्शन देखी है और वापस मार्केट्स ने रिबाउंड भी देखा है। अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में है, मार्केट्स में कोई बहुत बड़ा फियर नहीं है कि मार्केट बहुत बुरी तरीके से डिसलिडेट हो जाएंगे। जो अगर कोई ऐसी अनाउंसमेंट आ भी गई तो मार्केट में कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होनी चाहिए।
Mr. Sharma, you know, there is one view that the reason that we've seen this rebound in the market today after that sharp fall yesterday is also that expectations that the tariffs which are going to be announced later tonight by the US would have a minimal impact on the domestic economy. What are the basis for this, you know, this particular view of this particular optimism? And would you agree with it?
Because we have a great trade with US and we are in surplus, and our major our major exports are from the merchandise, but we have a great chunk of the services exports. Yes. Also, so if the impact is assessed, then that is not that much high that can impact significantly our market scenario or our product specific sectors.
But definitely agar US mein recession aati, jaisa aap keh rahe hain ki US ki inflation badhne ka kafi khatra hai, aur agar wahan pe global growth, wahan pe jo growth hai wo kam ho jati hai, consequently global growth affect hoti hai, to uska indirect impact to Bharat par aayega hi.
Dekhiye, agar indirect impact aata bhi hai तो हमारी ग्रोथ फिर भी 6% से ऊपर इंटैक्ट रहती है।
जी,
जब अगर यूएस 1% पे भी ग्रो करे, इन दैट सिनेरियो आल्सो वी आर एबल टू ग्रो मोर देन 6%, तो हमारे ऊपर जो इंपैक्ट है वो 6% के ऊपर का इंपैक्ट है कि हम 7-9% पे नहीं ग्रो कर पाते अगर वर्ल्ड मार्केट्स में स्लो डाउन होती है, लार्जेस्ट इकोनॉमीज में स्लो डाउन होती है, वी विल नॉट बी एबल टू ग्रो एट 8% और 9% और 7.5, बट वी विल बी ग्रोइंग मोर देन 6% इन एनी सिनेरियो। आपने देखा कि जब कोरोना के टाइम पे भी जब बहुत ही डिसलिग्रेशन हुई, वर्ल्ड जो GDP था बहुत बुरे से डिसलिग्रेट हुआ, हमने उसके सेकेंड क्वार्टर में ही रिकवरी की और हमने 9.5% के ऊपर की ग्रोथ दिखाई जब वर्ल्ड 6% पे ग्रो किया। तो जैसे अभी भी अब जो ग्रोथ है 6% से वो ऑन एन एवरेज 3% पे आ गई है पिछले कुछ वर्षों में, दो तीन में. अगर हम आगे का एवरेज देखें तो 3% है, लेकिन फिर भी हम उसके डबल रेट से भी ज्यादा पे ग्रो कर रहे हैं.
बिल्कुल.
तो हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो रेजिलियंस है, वो 6% पे तो है ही है. हम 6% पे ग्रो करने की रेजिलियंस अभी रखते हैं, खास करके जो कोरोना के बाद हमारा डेवलपमेंट हुई. इन द पोस्ट कोरोना इयर्स वी आर ग्रोइंग ऑन एन एवरेज मोर देन 8%
ड्यूरिंग द लास्ट
बेस्ड ऑन द रिफॉर्म्स. अगर पीछे के 3 साल देख लें, इस साल के 23-24 को चलो ठीक है, हमने हमारा जो ग्रोथ है 6.5% या 6.6 और 6.7 रहेगा, लेकिन पीछे के 3 वर्षों का जो एवरेज ग्रोथ रेट है दैट इज मोर देन 8%. अगर हम 4 साल का एवरेज करेंगे दैट विल बी मोर देन 7.5%.
सो मिस्टर शर्मा, यू नो व्हाट यू सेइंग इज दैट बेसिकली वट एवर हैपन्स वी विल कंटिन्यू टू ग्रो एट एटलीस्ट 6%, राइट? एंड वट हाउ सिग्निफिक in this 6% you know growth that you're talking about, how significant is the domestic market or domestic economy, because that obviously is a driving force for us to be able to maintain that 6%.
Yes, 6% is the support of the domestic economy, because we are not relying that much on the exports, and our exports are $778 billion last year, but our major chunk of growth comes from the our domestic segment, our rural segment, our urban segment, basically our consumption trajectory. So we are supported by our own growth parameters, not relying significantly on the global growth or the global developments.
एक और चीज, आज से ठीक एक सप्ताह बाद यानी कि 9 अप्रैल को आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, और आरबीआई ने लिक्विडिटी इंजेक्शन जो किया है इकोनॉमी में, कहते हैं कि अगर वो लिक्विडिटी अब सरप्लस में हम हो गई है, सो तब बैंक ज्यादा सशक्त हो जाते हैं, जो भी कटौती होती है उसको पास ऑन करने में भी. और आज अगर हम देखें तो रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट्स सबसे ज्यादा बढ़ने वाले सेक्टर थे जो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं. आपको लगता है कि इसको लेकर भी एक्साइटमेंट है, एक्सपेक्टेशन है?
एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन हमने अभी देखा है वो 3.61% पे आ गया. 4% के बिलो जब इन्फ्लेशन आता है तो एक बहुत ही कंफर्ट जोन में है. तो जबकि ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है बहुत स्टिकी है, अब यूएस में इन्फ्लेशन देखें या यूरोप में देखें तो उसमें उतना डिसेलरेशन नहीं हो पा रहा है, वो एक जगह पे आके रुक गया है. लेकिन हमारे पास जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो सिग्निफिकेंटली पिछले 3-4 महीनों में ही 5% से ज्यादा से कम होके अभी 3.5% के आसपास आ गया है. तो हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप है कि हम अपना रेट कट करें. हम अभी अगर रेट कट होता है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि वो एक ऐसा सेंटीमेंट देगा कि हमारी जो ग्रोथ है, जो अभी इस वर्ष में इस फाइनेंशियल ईयर में हम 7% से ऊपर ग्रो करेंगे डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स. अगर ग्लोबल चैलेंजेस भी रहे ऐसे ही रहे तब भी वी विल बी एबल टू ग्रो मोर देन 7% इन दैट सिनेरियो आल्सो.
राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी. द व्हाइट हाउस हैज कंफर्म्ड दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विल इम्पोज न्यू टैरिफ्स टुडे. व्हाइट हाउस स्पोक्सवुमन कैरोलाइन लियेविट सेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन कंट्रीज दैट इम्पोज ड्यूटीज ऑन यूएस गुड्स वुड टेक इफेक्ट इमीडिएटली आफ्टर ट्रंप अनाउंसेस देम, व्हाइल अ 25% टैरिफ ऑन ऑटो इम्पोर्ट्स विल टेक इफेक्ट टुमारो. द यूएस प्रेसिडेंट विल अनवेल द न्यू राउंड ऑफ tariff plans at a ceremony in White House Rose Garden at around 1:30 a.m. Indian Standard Time on Thursday. Earlier, President Trump had labeled April 2nd as Liberation Day, insisting that the levies will free the U.S. from its reliance on foreign goods. He said that all countries would be targeted. He further added that it is a bid to boost U.S. manufacturing and punish other countries for what he has called years of unfair trade practices. White House trade advisor Peter Navarro said that the new tariffs would raise $600 billion annually, which would be the largest tax increase since World War II. Mr. Sharma, here I want to know from you, because President Trump has said that the tariffs would be across board. And of course, we cannot, you know, rule out India is also there. So if the as and when the tariffs are announced, which are the sectors do you think are likely to be impacted the most?
Majorly, the target sector is auto sector, because I think that can face more heat because of this announcement. But overall, markets will be volatile. Every sector will be volatile because of such kind of repercussions or the announcements. But the major impact I am observing in major 4 or 5 factors. Firstly, that can escalate inflation trajectory in US.
Yes.
Second, impact on the bilateral relations of US with the other countries. एंड थर्ड इज ग्लोबल ट्रेड वॉर बिकॉज अदर कंट्रीज विल ऑल्सो कम फॉरवर्ड फॉर द रेसिप्रोकल टैरिफ्स एंड द फोर्थ इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल ग्रोथ एंड फिफ्थ इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन मेनी कंट्रीज दोज हु आर मेजरली डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट सेगमेंट.
सो ये जो ट्रम्प टैरिफ जो एक वो है थ्रेट है वो शुरू हो गया था जनवरी में जब से उन्होंने अनाउंस किया और अब एक्चुअली वो उसको वो एक अमली जामा पहनाया जाएगा तो उसको लेकर एक वो रही है मार्केट्स में एक अनिश्चितता रही है और पिछला जो वर्ष अगर हम देखें तो काफी उतार चढ़ाव था बाजारों में जो वित्त वर्ष अभी समाप्त हुआ लेकिन उसके बावजूद 5% से अधिक बढ़ा सेंसेक्स मिड कैप्स 5.6% बढ़े और स्मॉल कैप 8% बढ़े. अब इस वर्ष से आपको इस वित्त वर्ष से आपको क्या आशाएं हैं स्टॉक मार्केट्स के लिए?
देखिए क्या था सोनू जी, मैं बताता हूं कि शुरू में जब ऐसे अनाउंसमेंट्स आने शुरू हुए दिसंबर से कह लो या जनवरी से कह लो तो सभी अनाउंसमेंट्स यूएस के फेवर में जा रहे थे. यूएस मार्केट्स बहुत उछाल में थी, इमर्जिंग मार्केट्स में काफी बिकवाली हो रही थी लेकिन जब एक्चुअल जो इम्पैक्ट सामने आया कि सबसे ज्यादा तो यूएस की इकोनॉमी इम्पैक्ट होने वाली है उसी के लिए सबसे ज्यादा रिपरकशंस हैं. चाहे भले ही वो $600 बिलियन का अपना टैक्स भरपाई करना चाहते हैं बट दे विल बी इम्पैक्टेड सिग्निफिकेंटली. उनके जो अदर जो रिपरकशंस होंगे, इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा थ्रेट होता है. इन्फ्लेशन आपका $600 बिलियन से ज्यादा नुकसान कर सकता है. जब आप इंटरेस्ट रेट हाई रखते हैं देन योर मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ग्रोइंग, योर एम्प्लॉयमेंट इज नॉट क्रिएटेड, योर इकॉनमी बिकम्स स्टैग्नेटेड. तो ये सब चीजें शायद उन्होंने उस टाइम पे ऑब्जर्व की या नहीं की लेकिन अब सामने आनी शुरू हो गई हैं जिससे कि हमारी मार्केट्स ने रिबाउंड किया
जी.
और इस वर्ष में मैं ये समझता हूं कि मार्केट्स विल परफॉर्म बेटर एज कंपेयर्ड विद द लास्ट ईयर.
बट मिस्टर शर्मा, हियर आई वांट टू आस्क यू वन थिंग बिकॉज एज सोनू वाज सेइंग द अनाउंसमेंट्स वर मेड यू नो राइट आफ्टर द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड एंड यू नो ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट बट द पॉइंट इज सिंस देन देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स राइट. They said that we'll start the tariffs from this particular day. Then the day was shifted. So given that President Trump has made the trade, you know, current trade agenda the cornerstone of his administration. But how long do you think it will hold? Because you're yourself saying that actually American economy, the American companies are the ones which are going to be the most affected.
Yes.
So how long? I mean, do you see there is a scope for negotiation in the future? Do you see there's a scope for retaliation from other countries?
Negotiations have already been started since the last few weeks. Negotiations already started. They are ready to negotiate also. But if they are imposing in a knee-jerk way from tomorrow, then the repercussions will be...
Let's say long term.
Yes. Long term, they will not sustain in such a scenario that they are able to create employment or the manufacturing or the growth of the economy. All scenario will be impacted and they will come forward for the negotiations. Because this is not the scenario that there will be a reciprocal give and take. Because trade is for the welfare. Sometimes you import for the welfare of the people at lower cost. And sometimes you export for the surplus production to meet the other country's demand and to create employment opportunities in your country with the more enhanced production trajectory.
Yes.
So trade is different from such kind of blames or the
So briefly, jo world order change ho raha hai, jis tarah se US ka stance change ho raha hai, kya lagta hai aapko Bharat ke liye kuch opportunities briefly agar bataye, jo disruption aa rahi hai usme Bharat ke liye kuch opportunities bhi hai being जैसे आपने कहा कि हम इतने मजबूत रेजिलियंस वाले नेशन हैं और इतने फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है पूरे विश्व के तो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है.
देखिए जब भी डिसरप्शंस होती हैं तो भारत की इकोनॉमी और रेजिलियंट हो जाती है. जब हमने ट्रेड वॉर पहले देखी उसमें भी हमारी इकोनॉमी ने रेजिलियंस गेन की और उससे पहले चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था. जब पहले का ट्रेड वॉर में जब यूएस और चाइना में हुई तो उसके बाद यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हो गया. थोड़ा सा बीच में अप्स एंड डाउन्स हुए कई बार चाइना और अभी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यूएस इज अवर लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर. और अभी जो डिस्ट्रप्शंस हैं, अभी हमारा जो ट्रेड है हम लगभग 1500-1600 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है, $1600 बिलियन के आसपास ऊपर नीचे समझ लो. तो ये जो इकोनॉमीज हैं जो यूएस है इनके एक्सपोर्ट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है. अब यूएस जो है अगर लगभग कोई 3 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करता है 4 ट्रिलियन इंपोर्ट करता है
जी.
ऐसे ही चाइना जो है 3.5 trillion जो है एक्सपोर्ट करता है, लगभग 2.5 trillion जो है वो इम्पोर्ट. तो ऐसे करके दे ट्रेड इन ट्रिलियंस, बट अवर ट्रेड इज नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट कि हमारी ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा. बट दैट क्रिएट रेजिलियंस एक्चुअली.
राइट, एब्सोल्युटली. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर एक नजर डालते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे. प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.6% से अधिक के नुकसान में रहा. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.37% की गिरावट दर्ज हुई और हांगकांग का हैंगसेंग बिना किसी खास बदलाव के बंद हुआ. हालांकि जापान का निकेई 0.2% से अधिक बढ़ गया और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में सकारात्मक झुकाव के साथ कोई खास बदलाव नहीं हुआ. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख यूरोपीय बाजारों में प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ से संबंधित घोषणा से पहले मंदी का रुख था. दिन के कारोबार में समाचार मिलने तक जर्मनी का डैक्स 1.4% की भारी गिरावट पर था. लंदन के फुटसी में 0.7% से अधिक और फ्रांस के कैक में लगभग 0.7% की गिरावट चल रही थी. Moving on to the US markets, US stocks ended mixed on Tuesday as investors remained cautious ahead of the impending tariff announcements from the Trump administration. The Nasdaq composite rose over 0.8%, led by technology shares. S&P 500 was up by 0.38%, while the Dow Jones Industrial Average ended flat with a negative bias. Meanwhile, financial markets have been volatile in recent weeks as investors assess the economic fallout of US President Donald Trump's extensive tariff plans, which have sparked worries about US economic slowdown and higher inflation. Mr. Sharma, like what we were just discussing, you know, like Indian markets today have rebounded, but we see that nervousness is there in the US markets.
Yes, yes.
And like we were saying, because there is a very clear and present danger of US, you know, slowdown and economic slowdown and higher inflation.
Yes, yes, they are more nervous as compared with us because they will face the major repercussions, as I discussed, that the first impact will be on their inflation trajectory.
And both on the consumers and yes. corporate.
Yes.
अब वापस लौटते हैं भारतीय परिवेश में. देश में कोयले का कुल उत्पादन पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में भारी उछाल दर्ज करते हुए 190.95 मिलियन टन पर जा पहुंचा. पिछले वित्त वर्ष के 147.11 मिलियन टन के मुकाबले ये 29.79% की वृद्धि है. कोयला मंत्रालय ने आज कहा कि उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 में कैप्टिव तथा वाणिज्यिक कोयला उत्पादन व कोयले के डिस्पैच में नए रिकॉर्ड स्थापित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. मिस्टर शर्मा, एक हम ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है, सो जो कोर इंडस्ट्रीज है उनको स्टेडी सप्लाई रहे, जो कोल सेक्टर है उसकी एफिशिएंसी रहे, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये. हालांकि हम रिन्यूएबल्स सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन कोयला अभी भी हमारा मेनस्टे है.
देखिए क्या है कि हमारा एक आत्मनिर्भरता की तरफ जो एक जो हमारे कदम है वो बहुत ही दृढ़ होते जा रहे हैं. अभी जिस तरीके से हमारी इस साल की प्रोडक्शन हुई है कोल की, अगर हम टोटल क्यूमुलेटिव देखें तो हम 1 मिलियन टन से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं जो क्यूमुलेटिव कोल पड़े हैं, वो कुछ ही दिन पहले जो डेटा अनाउंस हुआ है. और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, वो पहले जो इंपोर्ट बहुत तेज गति से बढ़ते थे, अभी इंपोर्ट एक जगह पे आके स्टेग्नेट हो गए हैं क्योंकि हमने खुद ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. भले ही अभी भी हमारे इंपोर्ट काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज वी आर ए ग्रेट डिमांड ऑफ एनर्जी, बट नाउ द इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्रीजिंग इन दैट वे. जो पहले हम देखते थे कि 200 मिलियन टन से लगातार 220, 230, 240, 250, 260, तो अभी वो वहीं यहीं पे आके स्टेग्नेट हो गए. अभी हम बहुत ज्यादा कोल इंपोर्ट जो है नहीं कर रहे कि जो रफ्तार थी वो काफी स्लो हुई है क्योंकि हमने डोमेस्टिकली काफी प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, ओवर 1 मिलियन मैन पावर रिसोर्सेज वर हायर्ड थ्रू द डिजिटल प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और जेम इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25. स्पीकिंग ऑन दिस अचीवमेंट, सीईओ ऑफ जेम अजय भद्दू stated that the platform has harnessed digital capabilities and has emerged as a one-stop shop for procurement of all possible services required by government buyers at various levels of administration. He added that the manpower outsourcing service not only simplifies the hiring process for government organizations, but also ensures strict labor compliance through comprehensive service level agreement. GEM currently offers over 33,000 service providers, enabling buyers to engage manpower based on diverse criteria, including minimum wages and fixed remuneration.
उधर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य प्रशासन में AI प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए मुंबई, पुणे और नागपुर में 3 अत्याधुनिक AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई सेंटर फॉर जियोस्पेशियल एनालिटिक्स को मुख्य सचिव के कार्यालय में होस्ट किया जाएगा और ये उन्नत जियोस्पेशियल एनालिटिक्स क्षमताएं प्रदान करेगा। ये उत्कृष्टता केंद्र सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस, स्पेशियल डेटा मैनेजमेंट और जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से सरकारी प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करेंगे। ब्रीफली, आपको लगता है कि गवर्नेंस को एफिशिएंट बनाने में AI का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल?
यस, AI इज गेटिंग अ ग्रेट बेस एंड क्रिएटिंग एफिशिएंसीज आल्सो एंड इन इंडिया द अडॉप्शन इज आल्सो वेरी हाई। मैं समझता हूँ कि AI के अडॉप्शन से जो हमारी एफिशिएंसीज हैं मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेसेस में काफी हाई है। जब हम ये कंपेयर करें कि जो कंपनीज AI अडॉप्टिव नहीं है और दूसरी के साथ, तो उनका ग्रोथ रेट सिग्निफिकेंटली हाई है, जो ऐसा देखा गया है।
Let's take the next story. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 2-day visit to Thailand tomorrow morning to participate in the 6th BIMSTEC summit. This will be the Prime Minister's third visit to Thailand after 2016 and 2019. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with his Thai counterpart, Petongan Tan Kshinabhatra, at Bangkok tomorrow. They will review the progress in the entire gamut of bilateral relations and discuss ways to add greater momentum to the India-Thailand bilateral partnership and exchange views on regional and multilateral issues. They will also witness the signing of several bilateral documents. The theme of the 6th BIMSTEC summit to be held this Friday is BIMSTEC, Prosperous, Resilient and Open. Mr. Sharma, how important is the Prime Minister's visit from the perspective of, you know, regional cooperation, strengthening regional cooperation?
Regional cooperation is very, very important because now as global headwinds are there and geopolitics is also on high. So we have to find our further or the different growth partners also. And BIMSTEC is also a great growth partner or the trade partner of Indian economy. The trade bilateral trade is somewhere between $45 billion to $50 billion. So that is a great significant trade with the BIMSTEC countries. And Thailand and Bangladesh are the major trade partners, yes, within the BIMSTEC bloc. So this is a great, I believe, visit, and that will enhance the strength of our bilateral relations with BIMSTEC countries.
Moving on to commodities, oil prices fell today as traders braced for reciprocal tariffs that U.S. President Donald Trump is due to announce. Brent crude was trading over 0.5% down at $74.09 per barrel. WTI crude was trading at almost 0.5% down at $70.86 per barrel when reports last came in.
उधर सराफा बाजार में सोना आज बिना किसी बदलाव के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 89,340 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.21% बढ़कर 1,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.06% बढ़कर 90,555 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं मई 2025 में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.19% बढ़कर 99,650 रुपए प्रति किलो पर था। ब्रीफ सी आपकी टिप्पणी, सोने की जो कीमतें हैं अब ऊपर ही जाएंगी या कभी नीचे आने की भी?
देखिए, आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन कंसीडरिंग द ग्लोबल सिनेरियो। आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन गोल्ड। जब से मैंने बताया पहले, 2-3 साल पहले भी हमारे यहाँ पे डिस्कशन हुई है कि गोल्ड ऐसी सिचुएशंस हैं कि विच आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ गोल्ड।
समय
तो मेरा है। मैं समझता हूँ कि शायद 1,00,000 से ऊपर इस वर्ष में गोल्ड जरूर तय करें।
मिस्टर शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और अपनी विश्लेषण देने के लिए।
जी, थैंक यू मैम।
एंड बिफोर वी क्लोज, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी डिस्पाइट मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज। सेंसेक्स राइजेज ओवर 590 पॉइंट्स। निफ्टी क्लोजेज एट 23,332। एशियन इंडिसीज एंड mixed. European indices trade in negative territory ahead of US President Donald Trump's tariff announcement. And global crude oil prices fall. Brent crude trades at $74.09 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.